नए सफर की शुरुआत। अरमान ने दादाजी को गले से लगाया और उनकी कान में फुसफुसाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आस्था जैसी लड़की को मेरी जिंदगी में लेकर आए, वरना शायद प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, मैं कभी समझ ही नहीं पाता। ये बोलकर अरमान ने दादाजी के लिए अपने इमोशंस जताए। अब तो दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तभी सबके इमोशनल माहौल को दूर करने के लिए आहान और ध्रुव ने एक दूसरे को देखा। आहान बनावटी रोने की एक्टिंग करते हुए बड़बड़ाया, मुझे तो कोई इस घर में प्यार नहीं करता। इकलौते मेरे दादाजी थे, वो भी अरमान भाई ने छीन लिया, अब मुझे कौन प्यार करेगा। ये कहते हुए आहान की नज़र रौनक की तरफ गई। रौनक ने झट से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। वो आहान को किसी भी तरह का कोई लिफ्ट नहीं दे रही थी, क्योंकि रौनक को लग रहा था कि आहान ने उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया है, तो शायद इसीलिए वो अब उस पर तरस खाकर उससे शादी करना चाहता है। लेकिन रौनक ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। रौनक एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी, जिसे आज तक कभी किसी का कोई एहसान नहीं लेना पड़ा था। उसने अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिया था, लड़कों जैसा उसका लाइफस्टाइल था, लेकिन एक हादसे ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। फिर भी वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहती थी और ना ही आहान को खुद पर तरस खाने का मौका देना चाहती थी, इसीलिए वो उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। हाँ, अगर इस हादसे से पहले आहान उसे शादी के लिए प्रपोज करता तो हो सकता था कि रौनक उसे हाँ कह देती, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ये सुनकर कि टाइगर, मारिया और देव वापस आ रहे हैं, सभी लोग रिलैक्स हो चुके थे। वे जानते थे कि उन लोगों को जो भी काम दिया जाए आसानी से वो काम कर लेंगे और उन किडनैपरों को भी ढूंढ निकालेंगे। इतने में वे गांव से भी वापस आ जाएंगे। वहीं अविनाश आस्था के पास गया और धीमी आवाज़ में बोला, गोरी, तुम्हें किसी के लिए भी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी जंग किसके साथ है। वो इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, वो शैतान है, एक दरिंदा है, और उसे हम इतनी आसानी से नहीं निपटा सकते। अगर वो कोई नॉर्मल इंसान होता तो हम उसे कब का मार चुके होते, लेकिन उसे मारने के लिए हमें अच्छी खासी साजिश रचनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम उसकी जान ले पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए तुम अपना मूड ठीक करो और हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमें उसके ठिकाने के बारे में पता लग चुका है। अभी फ़िलहाल हम गाँव चलने की तैयारी करते हैं। अविनाश बड़े ही धीमे स्वर में आस्था को ये बात समझा रहा था, जिससे उनकी बात कोई भी नहीं सुन पाया। लेकिन अरमान आस्था के चेहरे के हर एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था। कहीं ना कहीं अरमान को शक हो गया था कि उसकी बीवी उससे कुछ छुपा रही है। ये शक ही काफ़ी था अरमान सिंघानिया के ऑब्सेशन को हवा देने के लिए। अब जल्दी ही सब लोग अलग अलग गाड़ियों में जाकर बैठ गए थे। जानबूझकर दादाजी ने रौनक, आहान और ध्रुव को एक गाड़ी में बिठा दिया। रश्मि आकाश के साथ थी और राधिका, नानीमा और सुमित एक गाड़ी में थे। दादाजी एक अलग गाड़ी में थे। साथ ही साथ घर के कुछ नौकर भी साथ चल रहे थे, ताकि वहां पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। स्पेशली खाना बनाने के लिए शेफ साथ चल रहे थे, क्योंकि गांव में जाकर उन्हें अपनी पसंद का खाना टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसीलिए कुछ शेफ साथ ही साथ एक दो गार्ड दादाजी के साथ थे। और अरमान अपनी बीवी के साथ अकेला सफर कर रहा था। एक गाड़ी पूरी तरह से आस्था के खरीदे हुए शॉपिंग के सामानों से भर उठी थी। हालांकि अरमान इतनी सारी शॉपिंग देखकर चिढ़ रहा था, बेचैनी से सोच रहा था, न जाने इस आफत के कितने सारे दोस्त हैं। साथ ही साथ उसे जलन भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल आस्था की खुशी के आगे वो मजबूर था, वरना अब तक तो सारे गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक चुका होता। जल्दी ही सफर शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ को जब इस बात की तसल्ली हो गई कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हैं, तो पूरे एक हफ्ते के बाद अबीर सिंह राठौड़ लौट आता है। और जैसे ही वो अपने मेंशन में लौट के आया, उसे पता चल चुका था कि अरमान सिंघानिया उससे मिलने के लिए आया था। साथ ही साथ इस बात के बारे में पता चल चुका था कि वो आस्था को ढूंढते हुए आया था। तो ये बात अबीर को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर गई थी कि आखिरकार आस्था इस तरह से कहाँ जा सकती है। और फिर जल्दी ही वो सिंघानिया मेंशन गया। वहाँ जाकर उसे पता चल चुका था कि सभी लोग मैडम के गाँव गए हैं। तब अबीर ने सोचा कि आखिरकार आस्था का गाँव कहाँ हो सकता है, और अगर आस्था किडनैप हो गई थी तो वापस कैसे मिली। कहीं ना कहीं अबीर के दिमाग में इस वक्त कितने सारे सवाल चल रहे थे, और अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अबीर सिंह राठौड़ ने भी अब गांव जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन उससे पहले उसे गांव का पूरा पता चाहिए था। उसे पूरा पता अगर कहीं मिल सकता था तो वो था आस्था के मामा मामी यानी कि मनोज और सीमा के घर। तो इसीलिए अबीर सिंह राठौड़ सीधे तरीके से अब प्रियंका के घर निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर प्रियंका ने अपनी माँ सीमा को भी बता दिया था कि इस तरह से राघव की किडनैपिंग फेल हो गई है, तो वो भी अपना सर पर दुपट्टा बांधे बैठी हुई थी क्योंकि इस वक्त उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वहीं प्रियंका पूरे 3 घंटे तक राघव को खुश करने के बाद अपने घर आई थी। उस वक्त वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, सीधा वो अपने बिस्तर में घुस गई थी और सो रही थी। लेकिन अबीर सिंह राठौर, जिसने बहुत पहले ही प्रियंका के मामा मामी के बारे में सब पता लगवा लिया था और साथ ही साथ इस बात के बारे में पता चल चुका था कि किस तरह से किन हालातों में आस्था की शादी और मान से हुई थी, तो इसीलिए वो सीधा वहां आ गया था। मनोज जी उस वक्त अपने घर पर नहीं थे, वो अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे। अब जैसे ही अबीर ने दरवाजा खटखटाया, सीमा झल्लाते हुए दरवाजा खोलने लगी। उसे लगा कि जरूर प्रियंका के पापा दोपहर का खाना खाने के लिए घर आए होंगे। उसकी मुलाकात अभी तक अबीर से नहीं हुई थी। हालांकि प्रियंका ने अबीर को देखा था, लेकिन सीमा जी अबीर को नहीं देख पाई थी। अब उनका सरदर्द अबीर को देखते ही गायब हो गया था और वो तुरंत अपने सर के दुपट्टे को खोलकर साइड में रखते हुए अदब से बोली, जी आप कौन हैं और आप किससे मिलने के लिए आए हैं? अबीर को देखते ही सीमा की लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गई थी। अबीर के साथ कितने सारे बॉडीगार्ड थे जो उसके पीछे खड़े हुए थे। अब अबीर सीमा को देखकर कड़क आवाज में बोला, मुझे प्रियंका से मिलना है। अब जैसे ही सीधे सीधे अबीर ने एकदम सपाट लहजे में प्रियंका का नाम लिया, सीमा तो अपने सपने बुनने लगी थी, जैसे कि प्रियंका और अबीर दोनों एक साथ हों, दोनों की शादी हो रही है, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। जल्दी ही उसने प्रियंका की शादी अबीर के साथ प्लान कर ली थी और साथ ही साथ उनके बच्चे भी सोचने लगी। अब सीमा को इस तरह से सोचते हुए देखकर अबीर ने अपने सीधे हाथ की चुटकी उसके सामने बजाई और सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, हेलो मैडम, कहाँ खो गई हैं? क्या आपको सुनाई कम देता है? मैंने बोला मुझे प्रियंका से मिलना है, प्रियंका यहीं रहती है ना? पर तब जल्दी से सीमा अपने ख्वाब से बाहर निकली और झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी 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 प्रियंका है, अंदर आइए दामाद जी। अपने ख्वाब के अनुसार उसने अबीर को दामाद कहा। अबीर घुटकर सीमा को देखने लगा था, तभी जल्दी से सीमा अपनी बात बदलते हुए हड़बड़ाकर बोली, मेरा मतलब है आपने अपना नाम नहीं बताया ना, तो बस इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। तब अबीर बोला, मेरा नाम अबीर सिंह राठौर है। अब जल्दी ही अबीर का नाम सुनने के बाद ही सीमा को तो लगने लगा था कि कितनी बड़ी शख्सियत उनके यहाँ आई है, इसीलिए वो फटाफट से प्रियंका को उठाने के लिए जा पहुंचती है।
लेकिन प्रियंका तो राघव के साथ रोमांस करने के बाद काफी हद तक थकी हुई थी, तो इसीलिए उसका बिल्कुल भी उठने का इरादा नहीं था। लेकिन फिलहाल जब सीमा ने सीधा पानी का भरा हुआ जग उठाकर अपनी बेटी के मुंह पर दे मारा था, प्रियंका झुंझलाकर उठकर बैठ गई। माँ, आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको दिखाई नहीं देता, मैं सो रही थी, क्यों उठाया आपने मुझे? हाँ, प्रियंका चिल्लाकर सीमा से बोलती है। वहीं सीमा प्रियंका को शांत करते हुए, श, श, कोई सुन लेगा, वो सुन लेगा। अब प्रियंका अपनी माँ को देखकर गुस्से से बोली, कौन सुनेगा? आपको हो क्या गया है? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या आप पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया? अब प्रियंका की बात सुनकर उसकी माँ गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोली, चुप हो जाना लायक, चुप हो जा। तुझे पता है कितना हैंडसम सा लड़का तुझसे मिलने के लिए आया है? वो तुझसे मिलना चाहता है, चल फटाफट से बाहर चल। अब जैसे ही सीमा ने ये बताया, प्रियंका हैरान हो गई कि उससे मिलने के लिए भला कौन आ गया। राघव से तो अभी 3 घंटे में मिलकर आ रही है, तो भला कौन आ सकता है उससे मिलने के लिए? फटाफट से उसने चेंज किया, सीमा ने खुद सिलेक्ट कर उसे कपड़े दिए थे, कपड़े काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और रिवीलिंग थे। तब प्रियंका घूर कर अपनी माँ को देखते हुए शक भरी नजरों से देखकर बोली, ये सब क्या है माँ, आप मुझे ऐसे कपड़े क्यों दे रही हैं? मैं कोई पार्टी में थोड़ी ना जा रही हूँ। तब सीमा उसे चुप कराते हुए बोली, जस्ट शट अप, जैसा कह रही हूँ वैसा कपड़े पहन और बाहर आ जा। अब जल्दी से प्रियंका ने अपनी माँ के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे, जिसमें उसका आधे से ज्यादा बदन पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। कपड़े पहनकर जैसे ही वो बाहर आई और उसने अपने सामने अबीर को देखा, तो वो पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उस वक्त प्रियंका पर अबीर ने केवल कुछ उचकती सी नज़र डाली और उसकी ओर देखकर बोला कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। तब प्रियंका जल्दी से अबीर के ठीक सामने जाकर बैठ गई और हिचकिचाते हुए बोली, हाँ हाँ बताइए ना मिस्टर राठौर, आपको मुझसे क्या काम आ गया? कहीं ना कहीं अबीर को देखकर प्रियंका की नीयत पूरी तरह से फिसल रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अबीर सिंह राठौर कितना ज़्यादा अमीर आदमी है और कितना ज़्यादा हैंडसम है। अगर अरमान के बाद कोई सबसे ज़्यादा हैंडसम और अमीर है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अबीर सिंह राठौर है। तब अबीर बोलता है,